हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तारा का ध्यान मल्लिका पर गया। मल्लिका का आधा पेट जल चुका था। तारा परी हैरान थी। वो समझ गई थी कि दोनों की जान एक है, एक की जान जाएगी तो दूसरी की भी जाएगी, इसलिए वो ध्यान से दोनों को देखने लगी। तभी अमन काली शक्तियों के मालिक अमित के सामने खड़ा होकर बोला, अब तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है अमित, तुम्हारा आखिरी पल आ गया है। सिर्फ एक और वार, एक आखिरी वार, और तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो जाओगे। अमन की ये शब्द सुनकर अमित चुप हो गया। उसने सोच लिया था कि अगर वो अमन का मुकाबला नहीं कर पाया और तिलिस्मी पत्थर हासिल नहीं कर पाया तो उसकी जान चली जाए तो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे पहले कि अमन अमित पर वार करता, पीछे से किसी की आवाज आई, ये मेरा शिकार है। ये आवाज सुनकर सभी हैरान हो गए और पीछे मुड़कर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक छोटा 13 साल का बच्चा पीछे खड़ा है और गुस्से से अमित को घूर रहा है। तारा, अमरेंद्र, करिश्मा और वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। ये बच्चा अचानक कैसे आ गया और ये मेरा शिकार है ऐसा क्यों कह रहा है? तारा बच्चे के पास गई और बोली, बेटा तुम कौन हो? तुम यहां कैसे आए और तुम्हें कैसे पता चला कि यहां क्या हो रहा है? ये बच्चों के देखने की चीज नहीं है, तुम यहां से चले जाओ। वो बच्चा तारा को घूर कर देखने लगा और बोला, इस काली शक्तियों के मालिक अमित को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरा गुनहगार है, इसे सजा सिर्फ मैं दूंगा। वहीं काली शक्तियों का मालिक अमित अपना पेट पकड़े बैठा हुआ था। वो हैरानी से बच्चे की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि ये बच्चा कौन है और अचानक कहां से आ गया। लेकिन तभी अमित को उस बच्चे के ठीक पीछे उसकी माँ दिखाई दी। उसकी माँ कोई और नहीं बल्कि प्रेमा थी। प्रेमा वही लड़की थी जिसका अमित ने शक्तियां मिलने के बाद बलात्कार किया था और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। तारा परी ने प्रेमा को देखते ही पहचान लिया। तारा ने ही तो उसे जादुई घर और खाने पीने के लिए बर्तन दिया था। तारा सब कुछ समझ गई थी। बिना किसी सवाल के वो पीछे की ओर खड़ी हो गई और अमन का हाथ पकड़कर बोली, मुझे लगता है कि अभी हम यहां से चले जाना चाहिए। इन लोगों का मामला है, इन्हें देख लेना चाहिए। अमन सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगा। करिश्मा समझ गई थी कि अगर तारा उन्हें जाने के लिए कह रही है तो उन्हें जाना चाहिए, इसलिए वो भी अमन का हाथ पकड़कर बोली, हाँ बेटा, वैसे भी अब इसने अपनी जिंदगी का सबक ले लिया है। ये ना मरा है ना जिंदा, ये तुमसे पूरी तरह से हार चुका है। तुमने इसे तिलिस्मी कड़ा और तिलिस्मी पत्थर से घायल किया है। ये घाव इसका जिंदगी भर नहीं भरने वाला। अगर ये मरना चाहे या जीना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो हमारे साथ। करिश्मा जी अमन, तारा और अमरेंद्र जी को अंदर ले जाने लगी। अमरेंद्र जी एक बार फिर रुककर अमित की ओर देखने लगे। वो अमित के पास जाकर खड़े हो गए और बोले, मैंने सोचा था कि तुम इतने बड़े धोखेबाज निकलोगे। तुम्हारे लिए मैं खुद को दोषी मान रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि काली शक्तियों का कोई धर्म या ईमान नहीं होता। इसलिए अब से जो मेरे मन में तुम्हारी माँ को लेकर दोष था, वो मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूंगा। अमरेंद्र जी ने अमित के मुंह पर एक चांटा मारा और वहां से निकल गए। वे सीधे अपने बंगले के अंदर चले गए। उनका बंगला पूरी तरह से सुरक्षित था, क्योंकि लड़ाई अमन के बड़े बाग में हुई थी और केवल शक्तियों के प्रदर्शन के साथ हुई थी। लेकिन इस लड़ाई के बीच किसी का भी ध्यान उन दो आंखों पर नहीं गया जो ये सब हैरतअंगेज तरीके से देख रही थीं। सोनल परी धरा को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर वापस आई और उसकी नज़र उस पर पड़ी। वो तुरंत गायब होकर उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, आप अभी तक यहीं हैं? आप यहां से नहीं गए? सोनल परी के शब्द सुनकर अक्षत पूरी तरह से चौंक गया और बोला, लेकिन आप अचानक यहां कैसे आ गई? मैंने अपने आसपास किसी को नहीं देखा। मैं कब से छुपा हुआ ये सब देख रहा हूं कि इंसानी दुनिया में इस तरह से भूत प्रेत जिन रह सकते हैं, और मैं अमन को आज तक अपना प्रतिद्वंदी समझता आया था। लेकिन अब तो मेरा भ्रम टूट गया है और मैं समझ गया हूं कि मैं उसके मुकाबले कहीं नहीं हूं। उस वक्त अक्षत बुरी तरह से घबराया हुआ था। सोनल परी उसकी हालत का मजा लेने लगी और बोली, सोच लो अक्षत खुराना, अगर तुम अभी यहां से नहीं गए तो कहीं ऐसा ना हो कि एकाध शक्ति का वार तुम्हारे ऊपर हो जाए और तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारी जान उसी वक्त चली जाएगी। अक्षत उसे देखने लगा और उसके करीब जाकर खड़ा हो गया और बोला, अगर आज मुझे कोई शक्ति मार भी देती है तो मुझे उसका कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने आपका खूबसूरत चेहरा होगा। अक्षत की बात सुनकर सोनल परेशान हो उठी। वो सोचने लगी कि कैसे समझाऊं इसे, लेकिन अक्षत की बात सुनकर उसके दिल में सिर्फ मोहब्बत आई। उसने आगे बढ़कर अक्षत के होठों को चूमना शुरू कर दिया। अक्षत के होठों ने सोनल परी के होठों को छुआ तो वो सब कुछ भूल गया। उसे लगा कि उसे इस दुनिया में सब कुछ मिल गया है। उसने भी आगे बढ़कर उसका साथ देना शुरू कर दिया। दूसरी ओर प्रेमा को वहां देखकर अमित बोला, ओह तो तुम अभी तक जिंदा हो, और ये कौन है? तभी वो लड़का आया और बोला, मैं तुम्हारे द्वारा पैदा किया हुआ तुम्हारा अंश हूँ। तुमने मेरी माँ के साथ जबरदस्ती करके बहुत बड़ी गलती की थी। तुम्हें याद है जब तुम जंगल में काली शक्तियों के महागुरु से मिलने जा रहे थे, उस वक्त तुम्हारे हाथ का अंगूठा कट गया था और उसकी कुछ खून की बूंदें मेरे ऊपर गिरी थी। तो उससे मेरा खून से अभिषेक हो चुका था, जिसके बाद तुम्हारे अंदर की शक्तियां मेरे अंदर भी आ गई थी। मल्लिका ये सुनकर हैरान थी। उसने सोचा था कि उसने जो अंश बनवाया है वो अमित को सबक सिखाएगा, लेकिन यहाँ तो पहले से ही अमित का एक और अंश तैयार था जो उसे सजा देने के लिए तत्पर था। अमित दर्द में होते हुए जोरों से हंसने लगा और बोला, अरे वाह प्रेमा, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी की गई उस दिन की गलती मेरे लिए इतना बड़ा वरदान साबित होगी। अगर मेरा ये शरीर जा रहा है तो क्या हुआ, मेरा ये शरीर मर जाएगा तो क्या हुआ। अब मैं अपने शरीर का नहीं बल्कि अपनी आत्मा का इस्तेमाल करूंगा। मेरे शरीर के त्याग के बाद मैं अपनी आत्मा को अपने बेटे के शरीर में प्रवेश करवाऊंगा और उसके बाद अमन से बदला लूंगा। प्रेमा हैरान हो गई और तुरंत अपने बेटे के पास जाकर बोली, बेटा तुम इसकी किसी भी बात में मत आना, ये बहुत बड़ा कपटी है। अभी और इसी वक्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसकी जान ले लो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी शक्तियों के सामने ये नहीं टिक पाएगा। प्रेमा के कहने पर उसका बेटा अपने पिता को घूर कर देखने लगा। उसने अपने मंत्रों का उच्चारण करते हुए अमित पर वार कर दिया। अमित सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा और चीखने चिल्लाने लगा। एक भयानक आवाज के साथ अमित का शरीर राख में तब्दील हो गया। वो राख गायब होकर काली पहाड़ी पर काली शक्तियों के महागुरु के पास पहुंच गई। महागुरु पागल हो गया और जोरों से चीखने चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे एक बार फिर सफेद जिन्नातों से हार मिली थी। अमित के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था, कितने सालों तक इंतजार किया था। अमित के मन में सफेद जिन्नातों के खिलाफ कितने ही ख्यालात डाले थे, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अमित मिट्टी में मिल चुका था और महागुरु ने यह भी देख लिया था कि अमित को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का एक अंश था। तारापरी ने वक्त रहते ही भांप लिया था और प्रेमा को जादुई घर और बर्तन दिया था। प्रेमा ने उसी जादुई घर में रहते हुए अपने बच्चे को पाला और चालाकी से उस बच्चे का खून से अभिषेक भी करवा दिया था, जिससे अमित की शक्तियां उसके अंदर आ गई थी।
अमित के मरने के साथ साथ मल्लिका के शरीर के अंदर से वो काला साया निकल गया। काले साये के निकलते ही मल्लिका एक बदसूरत और बेजान बुढ़िया की तरह वहां पड़ी हुई थी। काला साया जो उसे खूबसूरत बनाता था वो गायब हो गया और काली शक्तियों के महागुरु से मिल गया। मल्लिका की जिंदगी का भी अंत हो गया, उसके बचे कुचे प्राण भी निकल गए। अमित की जान जाने के बाद प्रेमा हंसने लगी और उसने अपने बेटे को चूम लिया और बोली, मेरे बच्चे, तुमने मेरी तपस्या का फल मुझे दे दिया है, अब कभी कोई काली शक्ति इस तरह का कारनामा नहीं करेगी। लेकिन प्रेमा ने अपने बेटे की आंखों में आई अलग अलग रोशनियों को नहीं देखा, जो इस वक्त काली शक्तियों के महागुरु से बात करने में व्यस्त था। महागुरु ने अपना दूसरा पासा फेंक दिया और अमित के बेटे को अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। प्रेमा के देखते देखते ही उसका बेटा गायब हो गया। प्रेमा हैरान हुई और जोरों से चीखने लगी। प्रेमा की आवाज़ सुनकर तारापरी और अमन वहां आए। तारा उसे संभालने लगी। प्रेमा रोते हुए बोली, मेरे बेटे ने अमित की जान ले ली, लेकिन अचानक से मेरे बेटे को न जाने क्या हुआ कि वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। तारा और अमन हैरान हो गए। तभी करिश्मा आगे आई और बोली, वो गायब नहीं हुआ है, उसे काली शक्तियों के महागुरु ने अपने पास बुलाया होगा ताकि वो सफ़ेद जिन्नातों को परेशान करने के लिए किसी को तैयार कर सके, क्योंकि उसका हथियार अमित तो अब दुनिया में नहीं है। अमन और तारा परेशान हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि काली शक्तियों का महागुरु इस तरह की कोई हरकत करे। अमन बोला, मैं उस काली शक्ति के महागुरु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।